दूर बुलाया है, बस दे करके फिर अपनी आंखें, इससे कोई प्रयोजन नहीं हुआ। आंखें बंद करके खुले, बाबा बाबा आंख तो खोलो, यहाँ पर कोई भूखा नहीं रहता, मेरी मैया ने तुमको देखा, अब देख करके तुमको भूखा देखा इसलिए हमें भेज दिया, जाओ इसको दूध दे और पिला, किंतु मुझे जाना है, विलम्ब हो जाएगा इसलिए मेरी मैया डांटेगी, इसलिए अभी तू नहीं पिएगा तो अभी तुम ध्यान कर रहा है तो ध्यान करो, किंतु पीछे से पी लेना, और मैं जा रहा हूँ, मैं उधर से लौट करके आऊँगा तो मत पीजिएगा। कृष्ण चले गए, इस रूप में चले गए, जाते समय उनके तरफ में देख रहे हैं, उनकी चावनी चलने की मधुरमा देख करके थोड़ा सा देखा, फिर आंख बंद करने की चेष्टा, हमारा चित्त क्यों ले रहा है, चले गए। इसके बाद में दूध उठाया और पिया, और पी करके एकदम अधीश हो गए, और कृष्ण कृष्ण कह करके रोने लगे, वही लड़का ही कृष्ण था, अब उनको पता चला, उसने मैं क्यों नहीं समझा, लेकिन दूध में इतना अमृत, तब रोने लगे। वही यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं, वो साधारण बालक नहीं है, वो कैसा है, स्वयं कंदर्प है, उसी को वो बतला रहे हैं। और दूसरी में राधा जी दीरा में तड़पती हुई कृष्ण कृष्ण कह रही थी, अत्यंत जब भी भोर हो गई तो कृष्ण रह ना सके तो उनके भाव दशा में कहो, अथवा स्वयं रूप में वो आकर के या स्फूर्ति के रूप में या स्वप्न के रूप में उनको दर्शन, उस समय स्वप्न रूप में दर्शन देना, स्फूर्ति कराना और ये साक्षात दर्शन में उन लोगों को कोई भेद नहीं बात हो, वो सब समझती हैं कि ये साक्षात दर्शन, किंतु पीछे से उनको पता चलता है ये स्फूर्ति, अब वो भेद अंतर नहीं कर पाती हैं, साधक को नहीं कर पाता है जो वो साक्षात दर्शन था या स्फूर्ति थी या स्वप्न, उसको प्रभेद ही नहीं बात। कृष्ण प्रबोध पीछे से देते हैं कि नहीं, वो न तो स्वप्न था और न तो स्फूर्ति, वो तो साक्षात में ही था, नहीं किया, इसलिए साधकों को कभी कोटि कोटि जन्मों के सौभाग्य से कृष्ण का ऐसे स्वप्न में भी दर्शन हो जाए या स्फूर्ति हो जाए या किसी प्रकार से दर्शन हो जाए तो साधारण रूप उसको नहीं समझा जाए, जैसे भी हो बहुत सौभाग्य की बात है। गुरु जी का भी कभी दर्शन हो जाता है उसको भी साधारण मत समझो, अपने जीवन का सौभाग्य समझना, गुरु जी का दर्शन, ये सब होता है कब, जब दिन रात उसकी चिंता करते हैं तभी तो आएगा, तो सचमुच में अनुग्रह करके वो दर्शन दे देते हैं, हम ऐसा समझते हैं कि ये हम उसकी कृपा नहीं मान पाते, इसलिए साधक इस विषय में सावधान रह करके जहां तहां इस बातों को कह करके बिखेर न दे, इसलिए इस बातों को नहीं कहना चाहिए, अपने हृदय में उसको दूर करके रखना चाहिए। इन्होंने हम पर दया करके अपनी स्तुति की बात ये कहा, किसने, बिल्ल मंगल जी, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कम नहीं, जिनके मुख से या हाथ से चैतन्य चरितामृत स्वयं गोविंद जी दिखा रहे हैं, मदन मोहन यहाँ पर कहें लीला सुख, लीला सुख सब समय व्यवहार आया है बिल्ल मंगल ठाकुर, कहीं कहीं पर लीला सुख का प्रयोग किया गया है सुखदेव गोस्वामी के लिए, क्यों, क्योंकि कृष्ण के राधा जी के ये लीला सुख थे, इसलिए इसलिए श्रीमद्भागवत में कहीं कहीं जो लीला सुख का वर्णन किया गया वो सुखदेव गोस्वामी के लिए, वो राधा जी के लीला सुख के लिए। इसलिए लीला सुख वृंदावन में प्रविष्ट जब हुए तो कृष्ण उनके सामने अवतूर्ण हुए, कैसे अवतूर्ण हुए, अभी बतला है, अथवा ये कह रहे हैं जैसे गोपियों के सामने वो आविर्भूत हुए ठीक उसी रूप में राधा जी के साथ में और उनको दर्शन किया। हमने बतलाया था ना जिसे वो उपवास कर रहे थे, इसके बाद में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। आप जब तक दर्शन नहीं देंगे मैं आप कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा, अनाहार से मरूंगा, ऐसा सोच करके खाना पीना सब छोड़ दिया। एक रात बीत गई, दो रात बीत गई, सर में तो आएंगे नहीं। जब प्राण कंठ में आ गए हठात उन्होंने सुना दोनों आदमियों का स्वर, राधा जी का और आगे मत बढ़ो, ये अंधा है तो क्या है, ये पकड़ लेगा। और राधा जी कहती हैं ये क्या पकड़ लेगा अंधा, उनको दर्शन देने की इच्छा। फिर वो आगे बढ़ी, उन्होंने पकड़ लिए, कहा छोड़ो छोड़ो, तो ऐसे नहीं छोड़ूंगा, कैसे छोड़ेगी छोड़ेगा, हमारी आंखों को ठीक कर दिए जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। अच्छा ठीक, बस उन्होंने आंखों उनके सिर पर हाथ रख दिया, आंखें निकल आई और देख करके अत्यंत विफल, अब छोड़ नहीं रहे वैसे तो, अब तो छोड़ अभी नहीं छोड़ूंगा, कब छोड़ेगा, जब आंखें जैसे पहली थी वैसे हो जाए, क्यों इन आंखों से मैं विश्व को नहीं देखना चाहता, इन आंखों से आपको देख, इन आंखों में हम आप ही को बचाएंगे और किसी को। ये वो मस्त ऐसा है, तब जैसे आंखें थी वैसे हो गई, बस उनसे छुड़ा करके एक बार बस। ये रूप कौन सा था, पाषाण आदिभूत सौरी स्मयमान मुखान बजा, क्योंकि उसी के लिए ये वर्णन कर रहे हैं, इसलिए उनको वैसा ही रूप से दर्शन दिया जैसे गोपियों के सामने उन्होंने, गोपियों की सभा में अंतर्ध्यान हुए, और गोपियां जब जय कीते इत्यादि जब श्लोक पढ़ने लगे तो कृष्ण ने उनको जैसे दर्शन दिया ठीक उसी रूप में उनको भी। इसलिए इनकी प्रकृति के लिए और उनकी इच्छा थी, रास में कृष्ण कैसे थे सुंदर, उनके आराध्य तो कृष्ण है, कृष्ण पक्षी है, इसलिए कृष्ण को दर्शन करना चाहते, इसलिए कृष्ण ने भी उनको वही उसी रूप में दर्शन दिया जिस रूप में गोपियों को उन्होंने दर्शन दिया। कैसे सौरी कृष्ण साक्षात मन से मनमत से भी मनमत, मदन को भी मोहन करने वाले गोपियों के सामने आके रूप हुए थे, इसी प्रकार से राधा गोपियों के समय एकदम देखकर के झलक देखा और एकदम पागल हो गई ये, अब उसी के लिए कर रहे हैं। राधा जी के पक्ष में ये बतला रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी अर्थ कर रहे हैं। देख करके भी राधा जी कह रहे हैं हमारा सौभाग्य ने इनको दर्शन कर, इसलिए सखियों से रुदन करते हुए कहा हेमन समय थोड़ी देर में ही देखा पलक में इधर हो गए, अब राधा जी विलाप करते कहीं हमने उनको देखा ही नहीं, इसके बाद में थोड़ी देर में फिर दर्शन दिया कृष्ण को दूर पर देख करके ब्रह्म बाहुल के लाभ पर प्रलाप करने लगे उनको देखकर, लीलाशुक उसी के लिए करें मारा वो भाव उदित हुआ जब राधा जी उनको किस रूप में देखा और हम हमारे सामने उनकी कैसी स्फूर्ति हुई जब उनको देखा, उन्होंने मारा, मारा माने मारने वाला, और मारा माने होता है कामदेव, दोनों होता है, कंदर्प देव भी होता है, रूप के द्वारा ही जगत को मारते हैं, कहीं भी उनका चित्त नहीं लगता है, जगत से उनका चित्त एकदम टूट जाता है। सखियों के प्रति राधिका जी की युक्ति है, क्या मारो स्वयं, ये स्वयं मारक अंदर है। हमारे सामने ये जो दिख रही हो ये कौन है? स्वयं कंदर्प। अथवा ये कौन है? ये जगतवासियों को अपना दर्शन देकर के और नहीं दर्शन देकर के दोनों प्रकार से मारते हैं, विशेष करके अपने भक्तों। भक्त लोग क्यों रोते हैं? दर्शन के लिए रोते हैं। आज जिनको दर्शन हो गया फिर पुनः उनके लिए रोते हैं, फिर दर्शन। इसलिए आपका नाम मार्ग, आप स्वयं मार्ग की आए हैं। कहते कंदर्प हो सकते हैं खूब सुंदर, किंतु इतने मधुर नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं मधुर दू की मंडलम यू, मधुर की द्युति मंडल, जैसे बिजली होती है उसकी द्युति होती है, ये माधुर्य की द्युति है। पुनः उनको संदेह हुआ, फिर कह रहे हैं आश्चर्य कैसे, नहीं नहीं ये मूर्तिमान माधुर्य है, द्युति नहीं, माधुर्य की शोभा नहीं बल्कि स्वयं माधुर्य है। बाल माता के माधुर्य ने भी मूर्ति धारण किया तब ये कृष्ण हुए हैं। मालूम होता है कि माधुर्य तो चलता नहीं, किंतु तो यहाँ पर माधुर्य चल रहा है, आकर के हमको दर्शन दिया। इसमें भी संदेह हुआ, वहां माधुर्य तो कभी चलता नहीं है। तो मनो नयनामृतम के, अजय नहीं नहीं ये हमारे नयन और मन को अत्यंत तृप्तिकारी करने वाली, अत्यंत सुंदर लगने वाली, इसलिए बड़े आप संतुष्ट होकर के कह रहे हैं। और तब तो हमारे नयन और मनों के लिए अमृत स्वरूपी हैं, अथवा स्वयं अमृत स्वरूप ही है। उसमें पुनः संदेह हुआ, कोई चीज स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या है कृष्ण के लिए? फिर वो कहते कहो ये और कोई नहीं, ये हमारे कांत हैं, केशव हैं, जो कि हमारे केशों को संस्कार करने वाले वही आए। अच्छी तरह से देख करके फिर कहते हैं मम जीवित बल्लभो, हमारे लिए प्राण बल्लभ है जो हमारे मन और नैनों को आनंद दे रहे। देखो देखो ये हमारे प्राण बल्लभ ही है और दूसरे नहीं हो सकते। ये कहते 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 फिर दौड़ी और फिर देकर गई, पकड़ने गई और फिर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। ये सब राधा जी के भाव को यहाँ पर दिख रहा है। साधक सुन करके यदि थोड़ी सी उत्कंठा उनके हृदय में हो तो उनका यह भजन सार्थक हो सकता है। आज ये भी कर रहे वन सागर भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन प्रणाली ऐसा है, हम लोग उसको एकदम स्पर्श नहीं कर पा रहे और कहाँ दिन रात मग्न होकर के उसमें करने हैं। ऐसे भजन सर यही किसी का नाम है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के संबंध में ब्रह्मचारी एक मुख से बहुत ही सुंदर विवेचन समन किया है। किसी दूसरे दिन हम लोग भी और भी बाकी रह गए हैं उनके संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं।
उनका भजन आदर्श है। वे पूर्व जन्म की गुण मंजर जो सब लोग ने कहा यही ये गुण मंजरी थी, अष्ट मंजरियों में से एक विशेष ही है। तो ये गुण मंजरी थी और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य के हृदय में भक्ति का संचार किया था, उसी प्रकार से हम लोगों के अंदर भी शक्ति स्फूर्ति कराएं, जिससे हम लोग भी उसी पथ पर चल करके महाप्रभु जी की और राधा कृष्ण की सेवा में प्रविष्ट हो सके। यही प्रार्थना करके हम लोग अपना कर्तव्य समाप्त करते हैं। किसी दिन दूसरे दिन हम लोग उनको विस्तार से अभी महाप्रभु का एक खत्म हो गया। जीवन में आचरण करके हम लोगों की शिक्षा के लिए इसको लिखा। मैं समझता हूँ कि केवल एक ही दो जन्म में इस ग्रंथ की सिद्धि होने की संभावना नहीं है। ठीक ठीक से इसका साधन किया जाए, हम समझे कितने जन्म लग जाएंगे इसी के साधन में। इसमें से जो अनर्थ निवृत्ति है और कर्मशः उन्होंने जैसे सत्ता निष्ठा रुचि और आसक्ति का वर्णन किया है, आश्चर्यों का भी विचार किया है, उसमें अनर्थ निवृत्ति से ही पार करना बड़ा कठिन। जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया जैसे वो हुए साधन करके जैसे वो हैं, यदि साधक भी उनको मान लिया जाए तो अभी जिस प्रकार से साधन किया है उनको हम यदि दृष्टिपात करते हुए ऐसा ही साधन भजन हम यदि करें तो ये अवस्थाएं आएंगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही कहा है कि एक प्रॉपर वे है, एक इम्प्रॉपर वे, एक उपयुक्त पद्धति है साधन और एक अनुपयुक्त साधन। यदि हम उपयुक्त साधन अवलंबन करें तब तो ये सब चीज़ें आएंगी, और यदि अनुपयुक्त हम साधन करेंगे तो सिद्धि नहीं। इसलिए क्रमशः हम लोगों को ऊपर उठना चाहिए। यद्यपि हमने इसको पढ़ा पाठ किया तो अभी हम लोग अभी योग्य हैं अनर्थ निवृत्ति वाले श्रद्धा और निष्ठा तक ही, अभी इसके ऊपर में हम लोग अभी रुचि में और आसक्ति में शायद बिरले ही कोई आया। इसलिए हम लोगों को वैसे ही चेष्टा करनी चाहिए जो उस दशा में हमने कहा, तभी हम लोगों ने श्रवण किया इसे। वो ऐसे ऐसे साधकों के लिए उन्होंने लिखा है जो उस कोटि में हों। वो प्रत्येक स्थिति के अनुसार में, ज्ञान के अनुसार में कृष्ण लीला का भी वर्णन हमारी रोचकता के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों में कुछ रोचकता आए, जैसे जैसे अधिकार में उन्नत आदमी होता जाएगा कृष्ण लीलाओं में भी ऐसे ही अधिकार आता है। अभी हम लोग सप्तम भावावस्था प्रेमावस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं उनकी बातों को। प्रेमी साधकों की बातें ये कर रहे हैं हम लोगों के लिए। जैसे आज हम लोग ये श्लोक पढ़ रहे थे, न पारे हम निर्बद्ध संयोग, तो साध कृत्या विबुधा युषा पिबा माँ भजन दुर्जर गृह श्रृंखला समृष्य ततबह पति जातु साधना। इस श्लोक में हम लोगों ने भी सुना है, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जब कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, इसलिए ऋणी हूँ, उसका मुख्य कारण ये बतलाया कि मैं बहुमुखी हूँ और तुम लोग एकमुखी हो। तुम्हारा हमारे प्रति जो भजन है वो एकांतिक एकनिष्ठ है और कृष्ण का है बहुनिष्ठ। उनके लिए करोड़ों नायिकाएँ हैं, करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों माताएं हैं, करोड़ों साधक हैं। यहाँ तक कि जो लोग ज्ञान मार्ग से मुक्ति के लिए भजन करते हैं उनका फल देने वाला कौन है?
इसमें ही
वो कृष्ण। कर्म के द्वारा कर्मों का जो फल मिलता है ये भी देने वाला कौन है? ये यथांग माम प्रपद्य, हमारा जिस रूप में भजन करता है कर्म की सिद्धि के लिए, मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम के लिए, परिपक्व प्रेम के लिए और भी ऊपर के लिए ब्रज प्रेम के लिए, मैं यथा योग्य सबको वो देता हूँ। किंतु तुम्हारे यहाँ हमारा वो नियम व्रत टूट गया ने? तुम लोगों ने जिस प्रकार से
यह तो वंचना वाक्य है, क्योंकि
नहीं
हीर ललित नायक का तो एक निष्ठ तो नहीं हो सकता है।
नहीं हो सकता, नहीं हो ही नहीं सकता, कभी संभव नहीं।
कृष्णा तो कभी गोपियों के साथ में असंकर रूप धारण करते,
वो लाख करें कृष्ण ऐसा नहीं हो सकता। वो कृष्ण के लिए सर्व गोपियों के लिए एक गोपी के लिए सर्वस्व नहीं त्याग कर सकते, उनको सब रख करके ही उनके प्रति जाना, सब भक्तों को यथा योग्य रखते हैं, वो कभी भी संपूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकते। वो कृष्ण अपने आप कहते हैं कि हमने अपनी मैंने माता को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, बलदेव भैया को नहीं छोड़ा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, मैं सबको साथ रखते हुए भी तुमसे स्नेह करता, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी। और तुम गृह की श्रृंखलाएँ और जितना स्नेह ममता जिस चीज़ के प्रति था, तुम लोगों ने सचमुच में जो दुर्जय हैं, दुर्जय माने कभी भी तोड़ी नहीं जा सकती, उन समस्त परंपराओं को, वेद धर्म, लोक धर्म, लज्जा, सब कुछ छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक मुखी तो हो ही नहीं सकता, एक निष्ठ नहीं हो सकता, मेरे लिए संभव पर नहीं, मैं तुम्हारा ऋणी, इसलिए मैंने तुम्हारी अनुवृत्ति के लिए ये नहीं किया। अनुवृत्ति वृत्ते जो कहा है उन्होंने, ना हम तो
सबको
भजतो, नहीं इसके बाद एवं मदर्थोज्जित लोक वेद स्वान
वो मई अनुवृत्ति
वृत्ति वृत्ते। यहाँ पर जो अनुवृत्ति के मैं तुम्हारे इस भावना को जो सब समय तुम उसी के निरंतर उसी भाव में डूबे रहो, ये तुम्हारी अनुवृत्ति के लिए मैंने किया, ये मैंने कहा। जैसे अलब्ध माने एक दरिद्र व्यक्ति को एक चिंतामणि मिलने पर या धन मिलने पर जब वो उसको खो देता है, वो निरंतर उसी के लिए चिंतन करता है, अनुवृत्ति सब ओह मैं खो दिया, कहाँ गया वो, कहाँ गया। ऐसे तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे इस प्रेम को जो हमारे लिए है तुम्हारे अंदर, उसकी अनुवृत्ति के लिए मैं अंतर्ध्यान, ये बात नहीं। आधा सत्य है, आधा गलत है। आधा सत्य इसलिए कि किसी दूसरे की अनुवृत्ति के लिए, कौन प्रेमी भक्तों के अनुवृत्ति के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारी अनुवृत्ति मैं जानता हूँ कि सब समय है सब रही, तुम्हारी अनुवृत्ति के लिए मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा। तुम्हारे हमारे लिए सब समय महाभाव की स्थिति तक है, तुम्हारी अनुवृत्ति को बढ़ाने के लिए मैं, बल्कि उसके लिए मैं लुब्ध हूँ, उसका आस्वादन करने के लिए, इसलिए तुम्हारी अनुवृत्ति के लिए नहीं। किंतु जिनको अजात प्रेम अथवा जात प्रेम, अजात प्रेम वालों को ये सब चीज़ें सुनाने के लिए और जात प्रेम वालों के हृदय में अनुवृत्ति के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कौन नर प्रभृति हैं या दूसरे लोग हैं या जो साधन अभी करके अभी वहाँ पर जन्म लिए हैं, जिनके अंदर में ऐसी भावनाएं नहीं है, उन लोगों की अनुवृत्ति के लिए मैंने ऐसा
कृष्ण कहलाने के हिंदी जगह में सब
इसलिए मैं तुम लोगों के नहीं हूँ। यदि मैं तुम्हारी अनुभूति के लिए ऐसा करता तो तुम्हारा ऋण चुक गया होता, तो फिर मैं ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं ऋणी इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी अनुभूति के, तुमको तो वो चीज़ है ही है अनुभूति निरंतर, वो ऐसी है कि मैं भी उसे शिक्षा ले सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी। विश्व में ऐसा कोई भी तुम्हारे समान नहीं है, इसलिए उनको इस चीज़ का पाठ पढ़ाने के लिए देखो गोपियों की अनुभूति हमारे अंदर में कैसा है, अपने आप स्वयं सिद्ध है। तुम लोगों को भी ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। इस शिक्षा देने के लिए मैं उनका ध्यान उनके लिए और मैं स्वयं उसको चखने के लिए आस्वादन करने के लिए, जो तुम ऐसी स्थितियों में हमारे विरह में तुम कैसी चलती हो, कैसी भावना करती हो, कैसे बोलती हो, इसको हम देखने के लिए मैं चाहिए। इसलिए प्यारी गोपियों मैं तुम्हारा प्रियतम है, तुम हमारी प्रियतमा हो, हमारे अंदर में दोष मत दे। ये मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर हमारे प्रति कोई रोष नहीं है, ये तो प्रेम का एक परिपक्व फल है। मैं जानता हूँ ऐसा दोष लगाना भी ये प्रेम का विलास है, ये मैं जानता हूँ। तो अभी मैं कहता हूँ हमारे प्रति तुम लोग दोष अनुसंधान, गोपियाँ कभी दोष अनुसंधान कर सकती हैं ये कृष्ण नहीं जानते हैं, जो कभी ऐसा कर नहीं सकती। एक साधारण भक्त भी भीष्म जैसा व्यक्ति भी कृष्ण में, अर्जुन जैसा भक्त भी दोष नहीं कृष्ण का दे सकता। द्रौपदी ने कभी कृष्ण को कोई दोष लगाया, जब द्रौपदी प्रहलाद इत्यादि ने ही दोष लगाया तो गोपियाँ तो उन्हें कभी नहीं, कभी वो कह रहे हैं। इसलिए साधारण भक्त लोग समझे मेरी भावना को गोपियों को, इसलिए वो कह रहे हैं। तो ये सब के सुनने के कहने के अधिकारी कौन है, कौन है? कृष्ण कह रहे हैं जैसे जात प्रेम वाले भी नहीं है उनके लिए मैं ये सब कह रहा हूँ, दिखला रहा हूँ। तो फिर साधारण जो जात प्रेम नहीं है अथवा जात भाव ही नहीं है, हम लोग जात भाव तो क्या बात, अभी अनर्थ शुद्ध हम लोग अभी नहीं, तरह तरह के अनर्थ हम लोग जितना भी करें ना, जब तक ये शरीर है हम लोग अनर्थ करने के लिए बात करें, जरूर हम में स्वार्थ रहेगा। हम लोग यहाँ पर अभी हैं ना, जब सब कुछ जान जाएंगे तुम लोग देखेगा कि महाराज जी से और कुछ पाने की कोई चीज़ नहीं है, तो हो सकता है कि हमको छोड़, ऐसा हो सकता है। इसलिए गुरु लोग चले जाते हैं गुरुवार को। प्रभुपाद ने कहा था ऐसे दुख करके कहा था, जब तभी वो लोग मुक्त पुरुष हैं हमारी शिक्षा के लिए कहा, विशेष करके लौकिक गुरु में तो ऐसा ही होता है। जो गृह परिवर्तन या क्या होता है, समावर्तन, समावर्तन माने क्या, गुरु को दक्षिणा दे दिया और अपना वो ले लिया, क्या सर्टिफिकेट ले लिए अपना, वो बीए का वो एमए का वो जो कहा होता है डिग्री ले लिया और डिग्री लेकर के चले आप, फिर कभी पूछा ही नहीं। हम लोग अपने हेडमास्टर जी से पढ़े, कभी उनको देखने के लिए पूछने के लिए नहीं गए जी हेडमास्टर साहब क्या क्या हुआ। इसलिए ये कहा बहुत उन्नत अधिकार का चीज है। इसलिए हम लोग ये शरीर रहते हुए बाध्य हैं अपने रोग से, अपने विचार से, परिवेश से, देहाशक्ति के कारण, आत्मबुद्धि के कारण, इसलिए भिन्नता ये सब दिख पड़ती है। किंतु हाँ
ये तो अपना ही आरोप है दूसरों
का। हाँ इसे अपना आरोप कर रहा है ये बात, क्योंकि मैं समझता हूँ गुरुदेव के प्रति हमने देखा, हम लोग उनको उस समय नहीं समझते। जितने जितने शरीर की आसक्ति दूर हो जा रही है, देहाशक्ति कुछ कम हो रही है, कितने परिमाण में हम लोग उनके अधिक से अधिक निकटतम होकर के हम समझ कुछ उनकी महिमा, तब उनके लिए कुछ सेपरेशन का भाव, विरह का भाव आता है, अन्यथा नहीं आएगा। अब ये भक्ति मनोज ठाकुर जी कह रहे हैं, मई भक्ति भूतानंद अमृतवाय कल्पते दिशा जता आसन्न स्नेहो बहुत ही नाम मजा है। और जिनकी भगवान के प्रति भक्ति है, मेरे प्रति भक्ति है, वो प्राण मात्र के लिए अमृत है। किंतु सौभाग्य से जिनका तुम्हारे जैसा स्नेह हमारे प्रति है, वह स्नेह हम लोगों को जरूर मिलाएगा। जैसे ही हमारे मिलने का मूल कारण है, तब तब परोक्ष रूप में कृष्ण मिलेंगे, मिलेंगे सबसे, किंतु परोक्ष रूप में। किंतु तुम्हारे जैसे स्नेह होने पर अब मिलने की संभावना, अभी मिलने की संभावना कह करके छोड़ दिया, अब ये अब तक हुआ भी प्रलंब का भाव दिया, अब लिया। इधर देखो शाम हो गई, शाम होने के बाद में अब रात आई, जिसको प्रदोष कहते हैं। प्रदोष समय में क्या लीला है, शाम को कृष्ण गोचारण करके लौट रहे हैं, लौट करके सब माताएं उनसे मिल रही हैं, उनकी आरती उतार रही है। उतारने के बाद में कृष्ण को जब ने सब भरपूर स्नेह कर लिया, तो यशोदा ने अंत में आकर के कृष्ण की बलैया लेती, उनकी आरती उतारती है और अपने घर में ले जाती है।